ये सारी सृष्टि, जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे, उस एक का अपने आप से खेल है। और ये खेल दो स्तरों पे पाया जाता है। एक जिसको उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस, जिसमें ईश्वर और शक्ति के रूप में ये खेल प्रकट होता है, और शक्ति ईश्वर के निवास के लिए अनेकों भुवन, अनेकों लोकों की रचना करती है, अनेकों सत्ताएं। उच्च चेतना के जो लोक हैं, जो सत्ताएं हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो पूरी तरह एकत्व में जुड़ी हुई हैं। उनमें जो ताल, छंद, लय है, वो परफेक्ट है। उसमें किसी प्रकार से ईश्वर और शक्ति के खेल में जो ईश्वर के अंदर भाव उठता है, शक्ति इमीडिएटली उसको प्रकट कर देती है बिना किसी डिस्टॉर्शन के। महर्षि अरविंद के बारे में कहा जाता है, जब वे बात करते थे तो बहुत कम बात करते थे, और यदि माँ एक दूसरे के वो विचारों को पढ़ लेते थे विद परफेक्शन, और यदि माँ ने कुछ कहा या श्री अरविंद ने कुछ कहा, तो अगर कोई पास में खड़ा होके उत्तर सुनता तो उसको समझ नहीं आता कि इस प्रश्न का, ये इस बात का ये उत्तर कैसे हुआ। तो माँ बताती हैं, बिकॉज शी कुड सी बिहाइंड, उसके पीछे 18-20 स्टेप, स्टेजेस, कड़ियां उसके पार जाकर उत्तर देती थी, और श्री अरविंद उसको पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड करते थे। लेकिन अगर कोई पास में अगर होता तो वो इस चीज को नहीं समझ पाता। ये सच में जैसे ईश्वर और शक्ति का खेल होता है, इस तरह का होता है। उस उच्च चेतना में किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं है। जो ईश्वर का भाव है वो शक्ति प्रकट करती है, और वो प्रकट करती है ईश्वर के खेल के लिए अनेकों अनेकों सत्ताएं। दिस इज द गेम। और वो ये चाहती है कि इस धरती पर भी ऐसा ही खेल हो। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि आई एम नॉट हियर टू क्रिएट मठ्स एंड सन्यासीज एंड आश्रमाज, ये मेरा लक्ष्य नहीं है कि मैं मठ बना दूं, उसमें मठाधीश हो जाएं और कुछ आश्रम स्थापित कर दूं और सन्यासियों की एक टोली बना दूं। आई एम हियर टू कॉल द सोल्स ऑफ द स्ट्रांग टू द लीला ऑफ कृष्णा एंड काली। ये एक खेल है, और वो चाहते हैं कि वही खेल धरती पर हो, बड़े सुंदर ढंग से हो। तो वो कल भी जो बात हुई थी कि जो भगवान की ओर मुड़ता है उसका औरों से संबंध, अगर औरों से संबंध टूट जाएगा तो फिर सृष्टि का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। वो बनी इसलिए है कि उसमें दैट प्ले शुड बी हियर इन परफेक्शन। हमारे यहाँ इन चीज़ों के कितने सुंदर सुंदर संकेत हैं। जब भी कोई विवाह होता है, एक तो शिव पार्वती के विवाह के बाद होगा, और फिर उसमें कहा जाता है कि उस तरह इट्स ए रेप्लिका। आइडियल मैरिज कौन सी है? शिव पार्वती की। उसके अनुसार, उसी की तरह, यानी उसी वो चीज जो एक संकेत है उच्च चेतना में पाई जाती है, वही चीज यहां प्रकट होनी चाहिए। मूल चीज ये है, इसीलिए हम लोग सावित्री की कथा इत्यादि इत्यादि करते हैं कि वो चीज जो मूल रूप है, वो मूल रूप हम लोगों को स्क्रिप्चर्स के माध्यम से ऋषियों ने, मुनियों ने दिया है, लेकिन वो धरती पर पाया नहीं जाता। वो केवल एक अवस्था है जो प्रकट नहीं हुई, जिसको ऋषियों ने अपने अंतर्दर्शन में देखा। जैसे राधा, राधा की चेतना, राधा का प्रेम, जो श्री अरविंद कहते हैं इट इज द सिंबल ऑफ द डिवाइन लव फॉर द लॉर्ड। अब ये जो डिवाइन लव है राधा का, वो धरती पर प्रकट नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि राधा एग्जिस्टेड, डिड नॉट एग्जिस्ट, लेकिन राधा इज ए फैक्ट ऑफ इनर एग्जिस्टेंस। आंतरिक जीवन में ये सत्य है कि बिना राधा के आप कृष्ण की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि बिना उस डिवाइन लव के इट इज इम्पॉसिबल। तो वह एक हम लोगों के लिए प्रेरणा है, ताकि हम भी अपने जीवन को वैसा ही ढाल सकें। यही चीज हम महर्षि अरविंद के जीवन में देखते हैं। ये बार बार इस प्रेरणा को हम लोगों के सामने एक उदाहरण के रूप में फिर से भगवान को रिपीट करना होता है। भगवान के अवतरण की जो सबसे अद्भुत बात होती है, वो श्री अरविंद कहते हैं एक जगह कि हिज लाइफ इज एन एग्जाम्पल। श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि देख, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये सारी सृष्टि कोलैप्स कर जाएगी। तो उनका जीवन एक एग्जाम्पल होता है हम लोगों के लिए, कि हम लोग उस तरह का जीवन जीने की चेष्टा करें। परंतु क्योंकि हम केवल जीवन को देखकर नहीं समझ पाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, विस्मित हो जाएंगे, इसलिए वह कुछ और भी हमें देकर जाते हैं। श्री कृष्ण केवल अपना जीवन ही नहीं, साथ में गीता भी हमें देकर जाते हैं ताकि हम उसको समझ सकें कि उन्होंने किस तरह का जीवन जिया। वास्तव में जो कुछ गीता में है उनका अपना जीवन है, अगर हम उसको क्लोजली देखें तो वी विल सी द सेम ट्रूथ, और वह जीवन हम किस तरह एक प्रयास करके उस ओर उठें। तो ये है ओरिजिनल गेम, और वहां पर केवल आनंद है और कुछ नहीं है उस प्ले में, जिसको कहा जाता है महाराज, जो वृंदावन में सदैव होता है। अब यहां पर उसकी एक छाया है, एक प्रतिकृति है, एक प्रयास है, हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी एक डिस्टॉर्शन है, लेकिन ओरिजिनल इमेज वो है। और जो यहां डिस्टॉर्शन भी है वो भी उसी ओरिजिनल इमेज को लेकर के डिस्टॉर्शन है। जैसे बचपन में लोगों को, बच्चों को बताया जाता है कि कॉपी करो, कॉपी करके सीखते हैं ड्राइंग पेंटिंग, तो वो देखते हैं एक इमेज और उसको कॉपी करते हैं। अब वो बेचारे प्रयास पूरा कर रहे हैं, प्रयास में उनके प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, नेचुरली वो मास्टर आर्टिस्ट की कृति है। तो प्रयास करते 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 एक समय आता है जब उसको कॉपी करते हैं, फिर वो उसी के अनुरूप, अब उनके अंदर वो इमेज से ज़्यादा वो शक्ति आ गई जिसने उस इमेज को प्रकट किया था, फिर वो उस चीज को अपने अपने ढंग से विविध रूपों से प्रकट करते हैं। तो भगवान की उस अनंतता को इस धरती पर उसी पूर्णता के साथ प्रकट करना, ये हम सबका लक्ष्य है। वही खेल जो ईश्वर और शक्ति का है वो यहाँ पर पुरुष और प्रकृति, पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति के बीच होता है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्रकृति भी एक छाया रूप में यहाँ आ जाती है और ईश्वर भी यहाँ पर ही टू वेयर से डिमिनिश्ड गॉडेड हियर, अपनी शक्तियों को मानव भूलकर पूरी तरह वो अपने आप को प्रकृति को दे देता है। और ये प्रकृति बहुरूपणी है, विविध रूप है, इसमें इतने भाव हैं, इतने रंग हैं, आखिर क्यों ना हो, अनंत से निकली है तो उसके अंदर क्यों सीमाएं होंगी। दो पत्ते एक वृक्ष पे, एक डाली पर एक जैसे नहीं होते, इतनी विविधता है। दो लोगों की अंगुली की छाप एक जैसी नहीं होती, और वो एंजॉय करती है इसमें क्योंकि वो प्रयास करती है अनंत की विविधता को कैप्चर करने की। ये संसार एक रस एक रंगा नहीं है, प्रकृति वो सारे रंग रस भाव जो उनके अंदर है उनको प्रकट करने की चेष्टा करती है। और जो आत्म तत्व है उनको जब देखता है तो पहले तो विस्मित हो जाता है, वास्तव में वो सारे रंग रूप ये सब उसी के आनंद के लिए हैं, बहुत सुंदर शेरविंद यहां कहते हैं। लेकिन वो पहले तो विस्मित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसे ऐसे भाव हैं प्रकृति के अंदर, एक और ऐसे भाव जो आकर्षित करते हैं, हृदय को सुख देते हैं, ऐसे ऐसे भाव जो भयभीत करते हैं और लगता है कि इनसे हम कैसे बचें, और दोनों ही उसी एक के अंदर हैं। लेकिन उस एक के अंदर, ईश्वर के अंदर, ये दोनों भाव ट्रांसफॉर्म्ड रूप में है, अपने ओरिजिनल रूप में है। जैसे भय की बात है या टेररिज्म की बात है, अब ये कोई कहेगा कि टेररिज्म भी भगवान से निकला है, भगवान के अंदर क्या टेररिस्ट भी है? अब देखिए टेररिस्ट भगवान के अंदर कैसे है। जब राम जी आते हैं सभा में, धनुष यज्ञ की सभा में, तो सारे राक्षस उनको देख के क्या सोचते हैं, वह आ गया हमारा काल, भयभीत हो जाते हैं, उनके गात शिथिल पड़ जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारा काल आ गया। उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण अपना वह रूप दिखाते हैं रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, तो अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लगता है। वह जो अभय देता है सबको, उसका दर्शन कितना भयंकर होता है। अब वो उसमें वो सत्य है, क्योंकि इट इज एट इट्स राइट प्लेस राइट पॉइंट, उसका एक अपना जो परफेक्ट प्रयोजन है कि वे तत्व जो अंधकार से भरे हैं, अंधकार से पोषित होते हैं, वो उस प्रकाश को देखकर भयभीत होते हैं क्योंकि उनका समय आ गया है नष्ट होने का। किंतु उसी शक्ति का, उसी ऊर्जा का, ये मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि बाकी तो और भी सरल है। सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल श्री अरविंद, माता जी से किसी ने पूछा था कि श्री अरविंद लिखते हैं अपने एक एफोरिज्म में, दिस वर्ल्ड वॉज बिल्ट बाई क्रुएल्टी सो दैट लव मे इनहेबिट इट, इट वॉज बिल्ट बाई डेथ सो दैट लाइफ मे एम्बॉडी इट। तो ये क्या है क्रुएल्टी, हाउ कैन क्रुएल्टी बी डिवाइन? तो ये सच है कि क्रुएल्टी इज फार्देस्ट फ्रॉम द डिवाइन, लेकिन डिवाइन के अंदर वो क्रुएल्टी नहीं है। डिवाइन जब संहार करते हैं तो उसके अंदर भी प्रेम होता है, लेकिन धरती पर जब उसके एक भाव को पकड़ने की चेष्टा प्रकृति करती है तो वो कुछ का कुछ बना देती है। लेकिन सैंक्शन वहां से है। तो इसका जो परफेक्ट सॉल्यूशन श्री अरविंद कहते हैं, एक सॉल्यूशन तो ये भय देखकर, एक और आकर्षण, एक और भयभीत होकर, एक सॉल्यूशन है कि इस प्रकृति के घेरे को तोड़ दो, ये तो चलना है, बहुरूपणी माया है, ये हम लोगों को प्रताड़ित करने आई है, बंधन बनाने देने आई है। लेकिन ये बंधन नहीं है, वो हमें तैयार कर रही है उस महाभाव से जिसकी एक छाया है। और श्री अरविंद इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं एसेज ऑन द गीता में कि अर्जुन को ये विश्व रूप के दर्शन क्यों हुए, और भी लोग थे उस समय, ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, वाई अर्जुन वाज चोजन। तो कहते हैं कि अर्जुन में एक ऐसी चीज थी जो ऋषि मुनि और तपस्वियों में नहीं पाई जाती। अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिसने जीवन को समग्र रूप में देखा था, उसने अच्छा भी देखा था, बुरा भी देखा था, भगवान का वह पक्ष देखा था जो वास्तव में भयभीत करने वाला है। किस तरह से आया था उसके जीवन में ये पक्ष, जब द्यूत सभा में इन सबको निष्कासित कर दिया जाता है, और वो कह सकता था कि नहीं ये तो मैं रिवोल्ट करता हूं, मैं संन्यास ले लेता हूं, लेकिन वो फिर भी अडिग रहा। ये पक्ष देखने की जिसमें साहस नहीं है, वो भगवान की उस विश्व रूप को भी दर्शन नहीं कर सकता है। ये बहुत अद्भुत बात है कि जीवन में जितने भी कष्ट, समस्याएं, पीड़ा, दुख, शोक, बाहरी अटैक्स, नाना प्रकार के इवन एडवर्स फोर्सेस, होस्टाइल फोर्सेस जिसको कहते हैं, उनके भी पीछे हमें उसी एक सत्ता को देखना है जो तैयार कर रही है हमें किस चीज के लिए, उस समग्र दर्शन के लिए। प्रकृति ने ये रूप भी रचे हैं, क्योंकि अगर हम इनसे ही भयभीत हो जाएंगे तो भगवान का विश्व रूप जब सामने आएगा तो हमारे, तो जब अर्जुन जैसे योद्धा के गात शिथिल पड़ गए, हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा क्या हाल होगा। हम भगवान का दर्शन चाहते हैं। कैन आर वी रियली रेडी? कितनी सुंदर बात है, मृत्यु कहती है नचिकेता को, जब नचिकेता कहते हैं वो कैसा है जिसका तुम इतना गुणगान कर रहे हो, तो कहता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि। तुम्हारे अंदर उतनी अग्नि है देखने की उसको, वो तो तुम तैयार नहीं हो। वहां तो जो हीरोज हैं, सेजेस हैं, ऋषि मुनि, वो उसके भोजन में परोसा हुआ निवाला है। मैं मृत्यु, उनको तो वो मसाले की तरह डालकर भोजन करता है, तो खत्म हो जाता है वो साइकिल वहां पर नचिकेता उसके आगे। और तब यम उनको बताते हैं कि देखो जिसको तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारे हृदय में है, दिस इज द इजियर रूट, तुम उसके समग्र दर्शन को नहीं कर पाओगे, दिस इज व्हाट दाउ सीकेस्ट। बार बार बताते हैं हृदय के अंदर अदिति के रूप में सीटेड है, इस तरह से सीटेड है, स्वान की तरह सीटेड है, बहुत सारी वो उपमाएं देकर, इट्स ए ब्यूटिफुल पैसेज, पूरा एक योग दिया गया है नचिकेता को। सो जीवन में ये सारी चीजें किसी पाप पुण्य की वजह से नहीं आती हैं। भगवान रादर वन कैन से गॉड इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स। अगर वो इन चीजों में पड़ा रहेगा तो बहुत समस्या हो जाएगी, उनका कंप्यूटर एकदम फेल हो जाएगा। अगर हम सबके पापों और पुण्यों की गणना करना शुरू कर दिया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बल्कि हमारे दूसरे जन्म में निश्चित रूप से ज्यादातर मनुष्य पशु बनेंगे, मनुष्यों की आबादी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य पाप वृत्ति में रत होते हैं अगर उस हायर कॉन्शियसनेस की दृष्टि से देखा जाए। बट मनुष्यों की वो बढ़ रही है, विकास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बिकॉज ही डजंट सी इट लाइक दैट। ना प्रकृति हमको छल रही है, ना हमें पीड़ित कर रही है, ना दंडित कर रही है, वो हमें तैयार कर रही है। जैसे एक माँ तैयार करती है बच्चे को कि तू थोड़ा जीवन को झेल, हर समय बैंडेड मत लगा, तू रो रहा है कोई बात नहीं, रोना बंद कर, मैं मल्हम लगा रही हूँ लेकिन रोना बंद कर, ये क्या जरा सा तू गिरा और रोना शुरू हो गया, स्कूल जा। अब बच्चा कह रहा है मेरे को स्कूल भेज रही हो, इतना तुम क्रूर माँ हो, और माँ कह रही नहीं ये मेरा प्रेम है, तू नहीं समझेगा। कैसा प्रेम है, 35 बच्चों के बीच में आपने भेज दिया मुझे एक ऐसा शिक्षक जो क्रूर से क्रूर, समझता नहीं, एक डंडा लेके बैठा हुआ है, आप प्रेम कह रही हो, हाँ ये मेरा प्रेम है। तो ये प्रकृति का सब कुछ, जिसको स्वर्ग नरक ये सब कुछ जो हम कहते हैं, सब केवल प्रेम है और कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स बट द डिवाइन लव, जो विविध रूपों में हमारे सामने आता है। तो जब हम इसको इस तरह से देखने लगते हैं तो वो मास्क के पीछे देख लेते हैं सत्य को, और जब सत्य देख लेते हैं तो मास्क गिर जाता है, उसके पीछे जो पीड़ा है, दंश है, कष्ट है, वो सब समाप्त हो जाता है, बिकॉज वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट लव विच इज इनसाइड इन दिस क्रिएशन। तो ये प्रकृति का जो ये लोअर नेचर का रूप है, ये एक गर्भाशय की तरह है जो हमें ढककर तैयार रखती है, करती है। प्रीमेच्योरली हमको वो बाहर अगर बच्चा निकल जाएगा तो वो अंग भंग होगा, विकलांग होगा, ये सब समस्याएं होंगी। तो एक लंबे समय तक पोषित करती है, और उस समय भ्रूण को यह नहीं पता होता कि मेरी माँ कौन है। उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो उसको ऊष्मा महसूस होती है, हाँ कुछ तो है, कोई तो है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उससे बाहर निकलना आता है, छटपटाहट होती है, लात चलाता है। अब देखिए दोनों का देखिए भाव कितना डिफरेंट। जब पहली बार बच्चा गर्भ के अंदर किक करता है तो माँ पिता कितना खुश होते हैं, है ना, कि आज इसने किक किया, इट्स ए माइलस्टोन। और जरा बच्चे से पूछिए तुम खुश हो, खुश नहीं हो, मैं बाहर आना चाह रहा हूं। प्रकृति प्रसन्न हो रही है कि ये सोल बड़ी हो रही है, बाहर आना चाह रही है। सोल सोच रही है मैं बंधक में हूं। गर्भाशय कोई बंधन थोड़ी होता है, बंधक नहीं रखा है प्रकृति ने। शेरविंद कहते नन इज बाउंड, नन इज फ्री। ये एक पता नहीं एक बड़ी सुस्त उदास एक थकी हुई मानसिकता का लक्षण है। हम बंधन में हैं, हमें मुक्त होना है, यानी भगवान कुछ है, बंधन कुछ है, आत्मा किसने बंधन पहनाया, ये इसके ऊपर मेटाफिजिकल चर्चाएं, कर्मों का बंधन है इसका। उस एक वेदांत में कहां ये चीजें आती हैं। उसी ने गर्भाशय में डाला है भ्रूण को और उसको बंधन की प्रतीति भी वही दे रहा है। क्यों दे रहा है? रेस्टलेस हो रहा है, निकलेगा। और प्रकृति को खुश हो रही है, वो ये नहीं चाहती कि हम सदैव, लेकिन वो ठोक बजा के तैयार हो तो ठीक निकलने के पहले एब्सोल्यूट सुपर नेचुरल डार्कनेस फॉल्स ऑन मैन समटाइम्स व्हेन ही ड्रॉज नियर टू गॉड। वो पैसेज जो है बहुत ही थिन एंड नैरो पैसेज है, इट डज नॉट अकोमोडेट द डिलीवरी, पर प्रकृति प्रयास करती है। तो वही चीज हम आज के युग में भी देखते हैं और व्यक्ति के अंदर भी, आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यक्ति तैयार है इसके क्या लक्षण है। माता जी से ये प्रश्न किसी ने पूछा, गीता में भी ये लक्षण दिए हैं, सिमिलर लक्षण दिए हैं। तो माता जी नहीं कहती जो रोज मंदिर जाता है वो तैयार है, जिसने सब किताबें पढ़ी हैं स्क्रिप्चर्स वो तैयार है, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है मोदक चढ़ाता है वो तैयार है, ऐसा कुछ भी नहीं। ना गीता कहती है ना श्री माँ कहती है। तो तैयारी का लक्षण क्या है? जो एकांत प्रिय होता जा रहा है, जिसको मन कर रहा है कि मैं अब ये भीड़ भाड़ नहीं अच्छी लगती, मुझे एकांत मिले, उसमें बैठो। ऑफकोर्स लास्ट स्टेज में वो सर्वत्र एकांत भी है, सर्वत्र एक है, लेकिन वो जो भ्रूण बाहर निकलना चाहता है, जो गर्भाशय से एम्ब्रियो डेवलप हो गया है, उसका एक लक्षण होता है, एक तो स्पिरिचुअल लाइफ में एकांत चाहिए, दूसरा उसको सब कुछ अच्छा है फिर भी उसको कोई चीज है जो उसको चाहिए, जो वेग सी है, जो नहीं जानता। अब गर्भाशय से ज्यादा कंफर्ट क्या हो सकता है? लोग अक्सर कहते हैं ना काश बचपन, वो गाना भी था ना, लौट आ दे मेरे बीते हुए दिन, तो बचपन के दिन। फिर बचपन के दिन क्यों, गर्भाशय के दिन बोलो, उसमें तो कुछ भी नहीं था, आपको गिरने का भी डर नहीं था, आप बैठे हुए हो, सब परोसा जा रहा है। बट दैट्स नॉट इवोल्यूशन, वो दिन नहीं लौट के आएंगे, उससे भी अच्छे दिन आएंगे लेकिन दूसरे सेंस में। तो ये गर्भाशय का जो पीरियड है सब कुछ है, बच्चे को सब प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन बच्चा फिर भी चाह रहा है कि नहीं, वो रेस्टलेस हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर अंतर्भास है कि इसके बाहर भी एक जगत है, उसने देखा नहीं, जाना नहीं। तो उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए तैयारी का एक लक्षण होता है, सब कुछ आपके पास है, ये नहीं कि अभाव है, विपन्नता है, लेकिन हृदय में आ रहा है नहीं कोई चीज और है, कोई चीज और है, छटपटाहट हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, आदमी ढूंढ रहा है, उसको मालूम नहीं क्या है, लेकिन एक अंतर्भास कहता है। कोई अगर किसी से पूछे आप सब लोग इतने साल से सत्संग करते हैं भगवान की ओर, भगवान देखा है, ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा शायद किसी एक पक्ष को देखा है कुछ एक, लेकिन भगवान देखा है बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप क्यों जाते हैं, आपको कैसे मालूम, इसका क्या उत्तर है? कोई बच्चे से गर्भ में पूछे तुम्हें कैसे मालूम बाहर कोई संसार है? बड़ी सुंदर एक स्टोरी आई थी छोटी सी, गर्भाशय में दो बच्चे बात कर रहे हैं, एक कह रहा है मैं तो यहां बड़ा प्रसन्न हूं, बाहर नहीं निकलना चाह रहा, दूसरा कह रहा है नहीं मैं तो छटपटा रहा हूं बाहर जाने को। क्यों, बाहर क्या है? अरे बाहर आनंद है, बाहर फ्रीडम है, बाहर प्रगति है, बाहर विकास है, तुम्हें कैसे मालूम, देखा है? बोले देखा तो नहीं, महसूस हो रहा है। और क्या है बाहर? बाहर माँ है। माँ, माँ क्या होती है? अरे मैं कैसे समझाऊं, मुझे ये प्रतीत हो रहा है। उसी तरह से गर्भाशय में ये अवस्था होती है कि कोई चीज हमको रेस्टलेस करती है बाहर आने के लिए, और सब कुछ हमें एक प्रिजन के रूप में प्रतीत होता है। नाउ दिस इज वेयर द डिफरेंस इज, ये प्रतीति का अर्थ ये नहीं कि प्रिजन है, वो प्रिजन नहीं है, वो तैयारी है। प्रकृति जानबूझकर हमें जेल में नहीं डाल रही है, लेकिन वो हमें आभास दे रही है जेल का, ताकि हम कोऑपरेट करें बाहर निकलने में। वो भी यही कर रही है, धक्का दे रही है। कैसे दे रही है धक्का? नाना प्रकार के ऐसे दृश्य लाएगी जीवन में कि तुम इससे निकलो, मैं चाहती हूं, देखो ये कितना अंधकार में है, निकलो इससे बाहर। तो कई बार लोग सोचते हैं हम तो भगवान की ओर मुड़े थे, हमारे जीवन में सब उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। नेचुरली भगवान की ओर मुड़े थे, इसीलिए तो हो रहा है। अगर सब अच्छा वैसे ही होता रहे तो फिर क्या क्या प्रयास करेगा व्यक्ति। तो ये जो उल्टा पुल्टा होता है जीवन में, क्योंकि वो पुश कर रही है प्रकृति, लेबर पेन्स। और हम लोगों को जो पीड़ा होती है जो कोई नहीं रिजॉल्व कर पाता, वो भी एक लेबर पेन है। और छटपटाहट होती है कोई चीज की, वो भी एक लेबर पेन, उसी का अंग है। और तब एक समय आता है जब हम बाहर आ जाते हैं और एक नया संसार प्रारंभ होता है, एक न्यू कॉन्शियसनेस में जन्म ले लेते हैं। तीसरा संकेत माँ कहती हैं कि तैयार हो रहे हो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कि जब तुम्हारे मन में कोई प्रश्न होता है तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में उसका उत्तर मिल जाता है। चाहे कोई कह देगा या कोई पुस्तक हाथ में आ जाएगी या अंदर, दीज आर साइंस कि हम एक नई चेतना के संपर्क में आ रहे हैं। तो पहले प्रकृति का घेरा होता है, और उसमें उस घेरे में भी बहुत विकास चलता है, जैसा कि गीता ने बताया है, सांख्य दर्शन में है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी। और यदि घेरे में ही रहना है तो घेरे में रहकर अधिक से अधिक हम सत्वगुण प्रकृति को धारण कर सकते हैं, और जो बाहर है उसको जानने की, हमसे परे है उसको जानने की चेष्टा नहीं करके ये विश्वास के साथ जी सकते हैं कि भगवान नाम की कोई सत्ता है। और इसी को कहते हैं रिलीजन। रिलीजन वास्तव में उस विश्वास का नाम है कि भगवान है और उन्हीं के अनुसार हम ऐसे कर्म करें जो सात्विक हों, वो कर्म करें जो एक प्रकार से विधिवत हों, विधान के अनुसार हों, शास्त्र के अनुसार हों, और हमें विश्वास है कि एक भगवान नाम की कोई सत्ता है। दिस इज रिलीजन। और उसमें बहुत ज़्यादा बाहरी कार्यकलापों पर जोर दिया जाता है। परंतु जब हमारे अंदर छटपटाहट होती है कि नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं है कि वो है, हम वैसा बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके अंदर समाना चाहते हैं अनेकों अनेकों रूप में, तब ये नया खेल शुरू होता है। तो वी ग्रेजुएट फ्रॉम वन खेल टू अनदर। तो इस प्रकृति और आत्मा नीचे और ईश्वर और शक्ति, इस खेल के बीच में वही सत्य एक दूसरे रूप से, एक दूसरे बैंडविड्थ में प्रकट होता है। वह है ब्राह्मण और माया। ईश्वर शक्ति ही ब्राह्मण और माया बन जाते हैं। ब्राह्मण वो एक अवस्था जिसमें हर चीज के परे है व्यक्ति, जिसको एक इम्पर्सनल वास्ट स्टिलनेस, जिसको कोई चीज डिस्टर्ब, ये एक पैसेज है। उस पैसेज के बिना हम नेक्स्ट फेज में नहीं जा सकते। उसको बुद्धिस्ट ने निर्वाण कहा और अद्वैतवादी ने ब्रह्म निर्वाण कहा, या ब्राह्मी अवस्था कहा, या अक्षर ब्रह्म कहा गीता में। वो एक स्टेट है जिससे सोल को पास करना पड़ता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम वहां जा करके समा जाएं या इस खेल को अपग्रेड करें। जो ब्रह्म अवस्था में जाकर उसी में स्थित हो जाते हैं, ब्राह्मी स्थिति, उनको ये सच है कि ये प्रकृति और उसके खेल में कोई रुचि नहीं आती। वो एक माया छलना इस तरह से प्रतीत होती है, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि जो एक उच्चतम अवस्था है उसके कंपैरिजन में ये नेचर कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका पूर्ण सत्य तब तक नहीं मिलता जब उसके नेक्स्ट लेवल पे ईश्वर और शक्ति के खेल में हम प्रवेश नहीं करते। माँ श्री अरविंद ये चाह रहे हैं कि हम इस धरती पर उस ईश्वर और शक्ति के खेल को प्रकट करें, क्योंकि प्रकृति भी यही प्रयास कर रही है। इसीलिए एक जगह इसको कहा गया है बड़े सुंदर ढंग से नल्लीदा ने, इट इज नेचर्स ओन योगा। श्री अरविंद ने भी इसकी बात की है। यह जो योग है कोई एकदम अनूठी ऐसी चीज नहीं जो अब तक नहीं हो रही। योग से लोग समझते हैं कि अब एकदम अलग चीज होने लगी। वह चीज जो प्रकृति प्रयास कर रही है उसी को हमको उसकी पूर्णता पर ले जाना है। जितनी भी प्रकृति की गतिविधियां हैं, जैसे कल बात हो रही थी, ज्ञान अपूर्ण है, पूर्ण ज्ञान, शक्ति अपूर्ण है, पूर्ण शक्ति, सामर्थ्य अपूर्ण है, संपूर्ण सामर्थ्य, प्रेम अपूर्ण है, संपूर्ण प्रेम, आनंद अपूर्ण है, पूर्ण आनंद, शांति अपूर्ण है, कितने कंडीशंस पर डिपेंड करती है कि पहले आदमी आसपास कोई ना हो, मोबाइल स्विच ऑफ हो, साथ में एसी लगा हो, वेदर भी अच्छा हो, सब कुछ सुंदर हो तो मैं थोड़ी देर के लिए शांति प्राप्त करूंगा। ये कोई शांति है? वास्तव में ये तो शांति का एक दिखावा है। रियल शांति तो ऐसी, माँ कहती है, यस यू कैन बी एट पीस, परफेक्ट पीस इवन ऑन द बैटल फील्ड, वो शांति है। शिव के नृत्य में भी शांति है, कृष्ण के संहार में भी शांति है, ये शांति होती है। ये शांति नहीं कि शांति प्राप्त करनी है थोड़ी देर हम चले जाएं कहीं दूर, वहां बैठ करके कोने में हम ध्यान कर लें। एक प्रारंभिक अवस्था में इट इज ऑल राइट, इट्स नेसेसरी, ये नहीं कि इसका औचित्य नहीं है, परंतु उसको अल्टीमेट समझ लेना बहुत बड़ी भूल होगी कि हम लोग बैठते हैं मेडिटेशन करते हैं बहुत शांति मिलती है। इट इज नथिंग बट ए स्मॉल टच। शांति का तो डिसेंट होता है, ऐसा जबरदस्त डिसेंट होता है कि सारी की सारी चीजें आसपास की इतनी दूर चली जाती हैं कि दे डोंट अफेक्ट एट ऑल। पास में टीवी चल रहा होगा, रेडियो चल रहा होगा, लोग बातचीत कर रहे होंगे, नाना प्रकार की चीजें हो रही होंगी, पर वो शांति अनटस्ट रहेगी, कोई चीज उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। दैट इज पीस, इट्स ए पावर। श्योरबिंदो सेज दैट पीस इज ए पॉजिटिव थिंग, इट इज ए पावर, इट इज नॉट ए नेगेटिव थिंग। कि चीजों के अभाव में शांति, सब कुछ है पास में शांति, भीड़ है शांति, पार्टी हो रही है वहां पर, शराब बट रही है और आप वहां हैं पूर्ण शांति की अवस्था में, अप्रभावित हो रहे। दैट इज द पावर ऑफ पीस। और वही पीस एक्सटेंड कर सकती है आसपास। कहा जाता है कि एक योगी के सानिध्य में जो हिंसक जानवर भी होते हैं वो अपनी वृत्तियों को त्याग देते हैं, सिंपली बिकॉज दैट पीस इज सो पावरफुल, सो कंटीजियस। कल हम लोग बात हो रही थी कि कैसे शेयरविंद की उपस्थिति में साइक्लोन और कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं, वो अपनी वृत्ति त्याग देते हैं उनके प्रेजेंस में। माता जी की बात हो रही थी, वो कोबरे की, कोबरा की, और वो देखता है और माँ थोड़ा सा हटती है, वो मुड़ के चला जाता है, बिकॉज वो एक बहुत ट्रेमेंडस पावर है जिसके सामने चीजें बिल्कुल ओवरवेलमिंग भी हो तो भी वो शांत हो जाती हैं। तो इस खेल को हमको एक हायर लेवल पे ले जाना है। अब नेचुरली ये खेल एक समय तक व्यक्ति इसमें रत रहता है, उसको मजा आता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। उसको गर्भाशय की उस अवस्था में जब कह रहा है मुझे बाहर क्यों मैं बाहर क्यों निकलूं, बाहर किसने देखा, कौन जाने क्या है, कहीं बाहर कोई हिंसक पशु बैठा हो प्रतीक्षा में हो कि निकले और मैं इसको निवाला बना लूं, तो एक अवस्था ये है और उनके लिए कोई समस्या नहीं है। फिर एक समय आता है जब हमको ये रास नहीं आता और तब हमें ये जेल लगने लगती है, तब हम एक दो राहे पर खड़े होते हैं और उसमें एक भाव जो हमारे ट्रेडिशन में ये भर दिया गया, ट्रेडिशन में नहीं है ये, पिछले हजार वर्षों की विकृति है, ये ओरिजिनल ट्रेडिशन में नहीं है, ये बाद में विकृति। कितना अधिक जिजीविषा से भरे हुए ये लोग थे जिन्होंने कहा कुर्वन नेवे हे कर्माणी जिजी विशेषतांग समा, 100 वर्ष जीव में कर्म करता हुआ। ये किसी थकी हारी सभ्यता के बोल नहीं है। हम लोग थकी हारी सभ्यता की तरह इससे डरना उससे डरना, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते, तू किस किस चीज से भयभीत हो रहा है, तू युद्ध से भयभीत हो रहा है, तू मृत्यु से भयभीत हो रहा है, तू पाप से भयभीत हो रहा है, तू पुण्य से भयभीत हो रहा है, तू कितने प्रकार के भय से भरा हुआ है, इस भय से मुक्त कर अपने आप को। सो दिस एक टेंडेंसी जो आ गई निराशावाद की, और निराशावाद से जो मायावाद निकला, दैट इज नॉट इवन द ओरिजिनल एक्सपीरियंस ऑफ माया। एक बार निरोधदार कहते हैं, लॉर्ड लास्ट 3 डेज आफ्टर माई फीवर आई हैव बिगन टू फील दिस होल वर्ल्ड इज ए माया, वॉट द ग्रेट पीपल हैव रियलाइज आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स ऑफ तपस्या आई हैव रियलाइज जस्ट विद ए लिटिल बिट ऑफ कोल्ड। ऐसा लिखते हैं कि मुझे कुछ दिन सर्दी जुकाम हुआ और मुझे पूरा संसार माया के रूप में प्रतीत हो रहा है। देखिए, मतलब थोड़ा सेमी ह्यूमरसली, कि जो लोग इतनी तपस्या करके रियलाइज करते हैं, मैंने उसको कुछ दिनों में ही जुकाम से रियलाइज कर लिया। और श्री अरविंद का उत्तर, वेल a fit of blues is enough to make one realize Maya. It is not difficult. The difficulty is in getting out of the Maya. कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में कहता है ये सब माया है, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये एक निराशावाद से निकला जो मायावाद है, ये एक अलग मायावाद है. ओरिजिनल माया का जो एक्सपीरियंस है बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है. इट इज नॉट अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस. अविद्यामय विद्यामय माया जो रास्ता दे देती हैं, चलो तुम जाओ आगे, इट्स ए ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. वो एक देवी हैं. किसकी माया है? श्री कृष्ण कहते हैं योग माया मेरी ही माया है. इसीलिए तुम इसको श्री अरविंद देख जी के यहां तक कहते हैं, यू कैनॉट स्ले माया, यू कैन स्ले मोह. माया तो कृष्ण की माया है. जो भगवान की माया है उसको तो कौन ऐसा योगी है जिसके अंदर ऐसी तलवार उसने बना ली कि भगवान की माया को स्ले कर दे. उनके सामने तो नत होना पड़ता है. और तब वो कहती हैं अब तुम तैयार हो, अब मैं तुम्हें आगे जाने देती हूं. उन्होंने इस सारी सृष्टि की रचना की है. सारे इवेंट सर्कमस्टांसेस उसी माया ने रचे हैं अपने विचारों के अंदर. और जब उनका दर्शन होता है तो क्या अद्भुत दर्शन है. सावित्री, लिटिल बिट वी विल रीड एंड देन प्रोसीड. बुक 2 कैंटो 14. उस दिन भी जो बात हो रही थी कि जो लोग मृत्यु के बाद हम इस तक जाते हैं, वर्ल्ड सोल वापस चले आते हैं, दिस वॉज दी बेसिक थिंग. तो इसके पार अगर जाना हो तो फिर क्या होता है, इसके पार क्या है. तो अशुपति, जहां हम लोग जाते जाते अचेत हो जाते हैं क्योंकि हम तैयार नहीं है उस प्रकाश में जागृत रहने के लिए, तो ये लक्षण होता है कि अभी हम तैयार नहीं है. तो फिर वो हमको थपकी देकर सुलाकर फिर से हमारे अंदर नई ऊर्जा डालकर वापस आ जाते हैं. फिर एक समय आता है जब हम जागृत होते हैं. वहां पर भी अशुपति योग की एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां वो वर्ल्ड सोल उसमें भी प्रवेश करके, जहां पर आत्माएं जाती हैं मृत्यु के बाद और आ जाती हैं, वहां भी वो जागृत है. थोड़ा सा इसका वर्णन हम लोग पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे. यानी माया का वर्णन के पहले कि वो कैसा स्थान है, पेज 294 Into creation's center he had come. The spirit wandering from state to state finds here the silence of the starting point. In the formless force and the still fixity and brooding passion of the world of soul, all that is made and once again unmade. Sab kuch wo banati hain, phir se wo wapas le leti hain us sab tatton ko. The calm persistent vision of the one. लेकिन वो जो कुछ भी बना रही हैं और जो कुछ भी अंडू कर रही हैं, माया कभी मायापति को नहीं भूलती. उनके अंदर ये विजन है. Inevitably remakes, it lives anew. Forces and lives and beings and ideas are taken into the stillness for a while. There they remold their purpose and their drift. Recast their nature and reform their shape. Ever they change and changing ever grow, and passing through a fruitful stage of death, and after long reconstituting sleep, resume their place in the process of the gods until their work in cosmic time is done. Next passage. Here was the fashioning chamber of the worlds. यहाँ पर माया रचना करती है कि जो फिर से जा रहा है उसके नए पुराने विचार, पुराना मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेती है. ये सब जो स्कीम आजकल बनी ना कि आप पुराना वो दे दो, टीवी फ्रिज हाँ और एक्सचेंज ऑफर और आपको नया मिल जाएगा, तो उसमें आपके थोड़े पैसे बचते हैं और वो अपग्रेडेड वर्जन आप ले सकते हो. तो ये डेथ क्या है, आपका एक्सचेंज ऑफर है और उसमें आप अपग्रेडेड वर्जन लेते हो. कंप्लीट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है एक तो सृष्टि जो आगे बढ़ गई बिटवीन योर बर्थ एंड डेथ, तो उसका एडवांटेज आपने लिया. होता है ना कि पुराने समय के लोग पहले कहते थे, पुराने समय में मैं भी, अब हम सभी पुराने समय के एक बार होते हैं, जो आज यंग है वो भी, तो उनको वो पुराना वाला वही पसंद था. जब फ्रिज आया था तो कितना रेजिस्टेंस था, नहीं जी हमको तो मटके का पानी प्रिय है, और थोड़े समय बाद जब उनको स्वाद लगा तो अभी सब टीवी आया था, ये पता नहीं क्या खिलौना आ गया घर में, अब बच्चे देखते रहते हैं बिगड़ रहे हैं। अब क्या होता है कि खुद देख रहे हैं लोग, घंटों टीवी देख रहे हैं सारे सास बहू के सीरियल, मानो जीवन में जो हो रहा है उतना काफी नहीं है, उसमें भी देखें हम उसी दुख को उसी पीड़ा को। मतलब मनुष्य नरक को कितना प्रेम करता है ये से दिखाई देता है। जीवन में जो हो रहा है सास बहू का लिविंग सीरियल वो काफी नहीं है, उसमें भी देखना है मुझे, और फिर पीड़ा होती है, देखो कैसा दिखाई, बिल्कुल ऐसी हमारी बहू ऐसी है। और बहू भी देख रही है हमारी सास बिल्कुल ऐसी है, और दोनों उस पीड़ा को दुगना करके आनंदित हो रहे। दिस इज सो ये एक होता है, यू गो देयर, वहां एक्सचेंज ऑफर लेकिन अच्छा होता है वहां, हाँ बिल्कुल आइडियाज भी मिलते हैं, बल्कि कई बार कुटिल आइडियाज, बेचारी उतना बुरी नहीं होगी लेकिन देख के देखा इतनी ही बुरी है, इट बिकम्स ए फॉर्मेशन। खैर ये एक्सचेंज ऑफर ओरिजिनल है तो इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, आप जाएंगे आपको पुराने सारे आपके जो पुराने विचार पुराने आइडियाज, क्योंकि अब नए जगत में जब आदमी आएगा 100 ईयर्स आगे एडवांस होके, अब हम सब लोग इतना कहते हैं बच्चे हमारे आईपॉड आई सेल फोन में सब समय ये करते थे, हम भी यही करेंगे नेक्स्ट लाइफ में, टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज ये जैसे ही युग आगे बढ़ता है हम जब बच्चे बनेंगे वील डू द सेम स्टुपिडिटीज जिनके लिए आज हम उनको कोस रहे हैं, क्योंकि ये चीज कुछ और है, इसके पीछे सत्य कुछ और है, हम उसको नहीं पकड़ पाते। सो एनीवेज जब वहां जाते हैं तो भगवान हमारे अंदर वो सॉफ्टवेयर चेंज करता है, ट्वीक करता है, इसमें समय लगता है। तो जैसे इंजन आप दे रहे हो कार का ठीक कराने, तो इंजन को बंद होना पड़ेगा, तो इसलिए मृत्यु होती है, ताकि पूरे इंजन को हमारी इनर टेक्नोलॉजी को माया के ग्रैंड सुपरविजन में सब सारे कारीगर वहां उसको ठीक करते हैं। तो क्या सुंदर लाइन है, हियर वॉज द फैशनिंग चेम्बर ऑफ द वर्ल्ड्स, एन इंटरवेल वॉज लेफ्ट ट्विक्स्ट एक्ट एंड एक्ट, ट्विक्स्ट बर्थ एंड बर्थ, ट्विक्स्ट ड्रीम एंड वेकिंग ड्रीम, ए पॉज दैट गेव न्यू स्ट्रेंथ टू डू एंड बी। यहां तक हम लोग जाके लौट आते हैं, ये हम लोगों की यात्रा होती है, जन्म मृत्यु फिर जन्म। बियॉन्ड वेयर रीजन्स ऑफ डिलाइट एंड पीस, म्यूट बर्थ प्लेसेस ऑफ लाइट एंड होप एंड लव, एंड क्रेडल्स ऑफ हेवनली रैप्चर एंड रिपोज। अब इसके परे माया के परे वे क्षेत्र हैं, शक्ति जहां पर रेन करती है, लेकिन सोल जब तक तैयार नहीं है वो जल जाएगी, इट इज प्री मैच्योर, तो उसी वूम्ब से वापस आ जाती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसी वो माया का दर्शन और अशुपति उनके पार कैसे जाते हैं। अशुपति यहां पर इस क्षेत्र में आ गए हैं, सचेतन है, वो सोए नहीं, वो उसके प्रभाव से अचेत नहीं हुए। एक भगवान की माया होती है ना जिसमें आदमी अचेत हो जाता है, वो जो कल बात हो रही थी मुझे बेखुदी के तूने भली चासनी चटाई, तो वो वहां पे पूरी तरह सचेत है। नेक्स्ट पेज, पेज 295 देयर, ओके शुरू से पढ़ते हैं। अलोन बिटवीन ट्रेमेंडस प्रेजेंसेस, माया की फैक्ट्री में कौन कौन से कारीगर हैं, विश्वकर्मा ये वो सब एकदम नई रचना देने के लिए तैयार। अंडर द वॉचिंग आईज ऑफ नेमलेस गॉड्स, सारे इंद्र वरुण मित्र ये सब देंगे नई नई ऊर्जा देंगे, अग्नि फॉर्म बिल्ड करेंगे, ये सब उनके अधीन कार्य कर रहे हैं। हिज सोल पास्ड ऑन ए सिंगल कॉन्शियस पावर, हिज इज अशुपति, टुवर्ड्स द एंड विच एवर बिगिन्स अगेन, अप्रोचिंग थ्रू ए स्टिलनेस डम्ब एंड काम टू द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, देयर ही बेहेल्ड इन देयर माइटी यूनियंस पॉइज द फिगर ऑफ द डेथलेस टू इन वन। इस सिंगल बीइंग इन टू बॉडीज क्लैश्ड, ए डायर्की ऑफ टू यूनाइटेड सोल्स सीटेड एब्जॉर्ब्ड इन डीप क्रिएटिव जॉय, देयर ट्रांस ऑफ ब्लिस सस्टेन द मोबाइल वर्ल्ड। नाम ना दे तो उचित है, हम लोग इंडियन बैकग्राउंड में नाम दे सकते हैं, किन की बात हो रही है, we can give names, but it's behind them in a morning dusk one stood. अब ये उनके पीछे कौन खड़ी हैं? वो हैं जगत धात्री माया, योग माया, जिसने सारे देवी देवता भी अपने अंदर से प्रकट किए. इट्स नॉट ए जोक जो कहा जाता है. वी जस्ट टेक इट वेरी कैजुअली और इस शब्द को कितना लूजली प्रयोग करते हैं. बट व्हाट इज दिस माया? बिहाइंड देम इन ए मॉर्निंग डस्क वन स्टूड हु ब्रॉट देम फोर्थ फ्रॉम द अननोएबल. एवर डिसगाइज्ड शी अवेट्स द सीकिंग स्पिरिट. वॉचर ऑन द सुप्रीम अनरीचेबल पीक्स. Guide of the traveler of the unseen paths, she guards the austere approach to the alone. She is the guardian. देखती हैं तुम तैयार हो कि नहीं हो. अगर तैयार नहीं हो, she will say, नहीं बच्चे, go back, some more experiences. So that's why she doesn't let us free so easily. She is the Maya of the Lord. उनको ये देखना है कि ये तैयार है कि नहीं है. प्रीमेच्योरली जाएंगे, जबरदस्ती करके जाएंगे, हट करके जाएंगे, तो हम उसमें नष्ट हो जाएंगे, उस प्रकाश में विलीन हो जाएंगे. इसका वर्णन है बाद में उस प्रकाश का, उस आनंद का. वी कैनॉट स्टैंड इट. शी गार्ड्स द ऑस्टियर अप्रोच टू द एलोन. एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फार स्प्रेड प्लेन परवेडिंग विद हर पावर द कॉस्मिक सन्स शी रेन्स इंस्पायरर ऑफ इट्स मल्टीपल वर्क्स एंड थिंकर ऑफ द सिंबल ऑफ इट सीन. सभी प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे उन्होंने अपने को प्रसारित किया हुआ है और सबके मूल में वो खड़ी होकर सृष्टि कर रही है. द सोल ओमनिपोटेंट गॉडेस एवर वेल्ड. तभी तो कहते हैं ना माया. पर माया कहाँ है कौन जानता है? छिपी हुई है सारे सृष्टि के, क्रिएशन के अंदर. Of whom the world is the inscrutable mask, जिन्होंने अपने ही ऊपर संसार रूपी आवरण को डाल रखा है और छिपाया किसको है? उसका मुख एक ज्योत है, घूंघट ये संसार. संसार रूपी घूंघट उस ज्योत को, उस परम तत्व को, उसको छिपाया हुआ है. जानबूझ के ये नहीं कि छिपाया है क्योंकि वो देना है, ताकि हम तैयार हो सकें उस प्रकाश के लिए, उस ज्योति, उस आनंद के लिए. The ages are the footfalls of her tread. Their happenings, the figure of her thoughts. And all creation is her endless act. अब जब अश्वपति वहां पहुंचते हैं, महामाया का दर्शन करते हैं, तो वो सारी शक्ति उनके अंदर प्रवेश करती है. सारी शक्तियों के स्वामी बन गए हैं. एक बार दिलीप कुमार रॉय के मन में वो शेरविन से कहते थे कि आई वॉन्ट टू डू दिस योगा. शेरविन ने एक बार उनको कहा, यू हैव मेंटल प्रिपरेशन, या ऐसे कुछ कहा उन्होंने. वो कहा इट इज़ नॉट एनफ फॉर दिस योगा. उन्होंने ना नहीं कहा, लेकिन कहा तुम इंटेलेक्चुअल हो, मेंटल थोड़ा सा है, तुम्हारा काम करता है, लेकिन इस योग के लिए तैयार नहीं हो अभी. तो उनको बड़ा दुख हुआ. शायद अभिमान को ठेस भी पहुंची कि इतने फेमस व्यक्ति और लॉर्ड ने मेरे इतने करीब और ऐसी बात कह दी. खैर, वो फिर लेकिन उनके अंदर छटपटाहट हो रही थी. तो किसी ने कहा उनको कि देखिए, एक तांत्रिक सिद्ध हैं, वो आपको योग दे सकते हैं. आप चलो उनके पास, भगवान ही को खोज रहे हो ना, तो क्या फर्क पड़ता है. श्री अरविंद से आपका पत्राचार ये सब तो है ही, उन्होंने मना नहीं किया है, पर योग आप इनसे ले लो. तो चले गए. वो होता है ना शॉपिंग, क्या यहाँ नहीं मिली वहाँ मिल गई. तो लोग डॉक्टर शॉपिंग भी करते हैं और विंडो शॉपिंग, तो ये विंडो शॉपिंग वाला योग कि चलो यहाँ नहीं वहाँ. तो वो चले गए. तो योगी ने उनको कहा सिट क्वाइट. कहते हैं मेरे से तो होता नहीं. कहा अच्छा कोई बात नहीं, यू डोंट डू एनीथिंग, आई विल मेक यू क्वाइट. 15-20 मिनट में एकदम शांत हो गए इनिशिएट करने के लिए. अचानक थोड़ी देर बाद वो उन्होंने कहा गेट अप उठो. क्यों, क्या हुआ, इनिशिएशन हुई? नहीं नहीं, तुम क्यों आए हो मेरे पास इनिशिएशन के लिए, यू आर ऑलरेडी इनिशिएटेड. कहा किसने मुझे इनिशिएट किया है? किसी ने नहीं. अरे उन्होंने जो सारी सिद्धियों के स्वामी हैं, उसके पहाड़ पर वो बैठे हुए हैं, उनसे इनिशिएट होने के बाद तू मेरे पास आया है. किनकी बात कर रहे हैं आप? अरे श्री अरविंद, सारी सिद्धियां जिन्होंने बटोर कर अपनी झोली में डाली हुई हैं. अच्छा, उन्होंने इनिशिएट कर दिया है, आपको कैसे मालूम? मुझे तो बताया नहीं, तो कहते मेरे पास आ गए और मेरे सामने आकर उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा जीव है। ये सब सिद्धियों के स्वामी, ऐसे उन्होंने डिस्क्राइब किया, सब बटोर कर। लेकिन पिक्चर देख के क्या लगता है, भोले बाबा बैठे हुए, सृष्टि में प्रलय भी आ जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हिज लुक कुड चेंज थिंग्स। मां बताती है ऑथेंटिक एग्जाम्पल ऑफ ए डेड कमिंग टू लाइफ श्री अरविंद के सामने, की जब स्कॉर्पियन बाइट से किकी द कैट शी डाइड। ये नहीं कि हस्तक्षेप करेंगे, एज आई सेड मूल संकर डाइड, अदर ये नहीं कि हर किसी को जीवन दान दे दें, पर वो शक्ति उनके अंदर थी और वो देखते रहे उस कैट को। एंड आफ्टर सम टाइम इट स्ट्रेस द बॉडी, एब्सोल्युटली स्फूर्ति में आई, कूदी और चली गई। माँ बताती है फर्स्ट टाइम सीन ऑथेंटिक एग्जाम्पल ऑफ द डेड कमिंग टू लाइफ। तभी तो निरोधदा ने उनसे पूछा कि हमने तो देखा है कि आप अपनी दृष्टि मात्र से लोगों की समस्या दूर कर देते थे, पेन हो रहा है, इतने तकलीफ में आ रहा है, दूर कर दिया, कितनी बार मैंने देखा है, ये 12 इयर्स में है, फिर आप स्वयं को क्यों नहीं ठीक करते। वैलिड प्रश्न है फिजिकल माइंड का। तो श्री अरविंद, ये उत्तर तो फिजिकल माइंड के परे का है, श्री अरविंद कहते हैं कांट टेल यू, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम समझोगे नहीं, तुम्हें मैं क्या बताऊं, पूरी कॉस्मोगनी बतानी पड़ेगी, अवतार का कर्म बताना पड़ेगा कि कृष्ण कैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं जरा के नोक से। कहते हैं कि नहीं, आई कांट टेल यू, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। अब क्या करें, चुप, अब इसके आगे कुछ बोलने को नहीं बचा। और जब वो शरीर छोड़ते हैं, जो अद्भुत बात, ये तो सबको पता है, 111 घंटे जो प्रकाश रहता है, और फिर अमल किरण इंस्पायर्ड होकर एक आर्टिकल लिखते हैं कि उन्होंने एक और सारे संसार के कष्ट को, पीड़ा को, दुख को, उसके रूट में जो विष है, बाहर तो वो सूखेगा, रूट में जो विष है उस विष को अपने अंदर सोख लिया, लाइक नीलकंठ, और सैक्रिफाइस किया अपने शरीर को। इस सैक्रिफाइस से हेवेंस मूव्ड कि ये क्या हो रहा है, पूरा विधान पलट गया। क्योंकि हम इस घटना को वास्तव में कैजुअली देखते हैं, पर अगर इसको जैसे हम लोग पुरानी मिथोलॉजी में ऋषियों ने जैसे लिखा, अगर उस सेंस में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि उन्होंने सारे संसार के विष को अपने अंदर ले लिया, और इस विष को अपने अंदर, इस देह के अंदर लेने के कारण उन्होंने इस देह को सेक्रीफाइस किया। वो सब लोगों की जो पाप है, केवल कुछ लोगों का नहीं, पूरी सृष्टि का पाप वृत्ति जहां से जन्म लेती है। तो पूरे स्वर्ग में, अन्य लोकों में हलचल मच गई कि ये क्या हुआ, कार्मिक सीक्वेंस उलट पुलट हो गई। पूरी सृष्टि जो कार्मिक सीक्वेंस के अनुसार 10,000 वर्षों में जो इवोल्यूशन होना था, उसमें एक खलबली मच गई, क्योंकि उन्होंने कई सारे कर्म एनल कर दिए सृष्टि के, केवल एक दो व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। और इस कारण उसके ऊपर से अचानक कहा जाए कि स्वर्ग के द्वार खुल गए, परमोच्च स्वर्ग के, और सुप्रामेंटल फोर्स डिसेंडेड इनटू हिज बॉडी एज ए ट्रिब्यूट। इट वाज द होमेज ऑफ द सुप्रीम, क्या करुणा बरसने लगी और इट एंटर्ड इनटू हिज बॉडी, और पहली बार मैटर में सुप्रामेंटल डिसेंट हुआ और फिक्स हुआ। दिस वाज हिज सैक्रिफाइस विच ब्रॉट द सुप्रामेंटल डाउन। 29 फरवरी को तो मैनिफेस्टेशन हुआ, पहली बार जड़ तत्व के अंदर। पहले श्री अरविंद उतारते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने को सबके साथ बांध रखा था, जोड़ रखा था, कोई रिसेप्टिव नहीं था, तो वो टच करके चली जाती थी। इसीलिए मां कहती है सुप्रीम स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइस। और तब उन्होंने उन सब की पीड़ा, यहां तक उन्होंने लिखा माने इट वाज द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ द श्री अरविंदो आश्रम। पहले उन्होंने ये लिखा था बिकॉज ऑफ विच ही हैड टू लीव हिज बॉडी। तो फिर लोगों ने कहा मां आप ऐसा लिखोगे तो हमें तो लोग जूते मारेंगे बाहर से। तो उन्होंने उसको कट करके लिखा लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ द अर्थ एंड मैन। बात एक ही है, बिकॉज एवरी डिसाइपल वॉज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग ऑफ द अर्थ, लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ द अर्थ एंड मैन बिकॉज ऑफ विच ही हैड टू, क्योंकि वो बुला रहे थे लेकिन उन्होंने जोड़ा हुआ था। ये मां श्री अरविंद का पहले का निर्णय था, We will not go alone for the realization, but carry everything together. नहीं तो इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि कोई अप्रोच नहीं कर पाएगा। और वो सब जो लैक ऑफ रिसेप्टिविटी थी उसके कारण वो सुपरमेंट लाता था, चला जाता था, आता था, चला जाता था. लेकिन फर्स्ट टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेक्रीफाइस वन कैन से ही पेड द डेट ऑफ अर्थ एंड मैन टू द गॉड्स. जो जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाता है कि मैं सूली पर चढ़कर तुम लोगों के गुनाहों को माफ कर रहा हूं. इट्स इनर ट्रांजेक्शन. सावित्री में लाइन है, पेड इज द डेब्ट, सेक्रीफाइस कंप्लीट हो गई है. द सेक्रीफाइस ऑफ गॉड्स मार्टिर्ड बॉडी इन द वर्ल्ड, पेड इज द डेट. वो जो हम सब का एक कर्ज है उन्होंने उतार दिया. वो उतार सकते थे, उनके पास वो सब कुछ था, लेकिन इन द प्रोसेस उन्होंने देह तक को, क्योंकि वो कर्ज कहां तक है, जड़ तत्व के अंदर. जितने पाप कर मनुष्य ने इस देह से किए, पाप नॉट इन द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बट वे सारी वृत्तियां इस मैटर पर जो छाप पड़ी है वो सब उन्होंने उसका बदले में सारी अपना तपोबल, सारी अपनी सिद्धियां, सब कुछ दे डाली, सो दैट सुपर माइंड कैन डिसेंड और हम सब का रास्ता आगे खुल जाए. अद्भुत है ये. वी विल रीड दैट मे बी आफ्टर दिस, क्योंकि उसके बाद तो, पर फिलहाल वहां जहां श्री अरविंद हैं, शंकर जी आप समय, हाँ 10:30 पांच मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो सेक्शन जहां डेट इज पेड उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे. कमिंग बैक टू महामाया, ही स्पिरिट वॉज मेड ए वेसल ऑफ हर फोर्स. सारी शक्तियां जो माया के अंदर हैं वो सब उनमें प्रवेश कर जाती हैं. जो बात हुई थी, सब सिद्धियां, सब शक्तियां. म्यूट इन द फैदमलेस पैशन ऑफ हिज विल, ही आउटस्ट्रेच्ड टू हर हिज फोल्डेड हैंड्स ऑफ प्रेयर. पर वो इससे संतुष्ट नहीं है. वो कहते हैं आपने सब कुछ मुझे दे दिया, लेकिन मैं पार जाना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड एंड फाइंड, डिस्कवर एंड ब्रिंग दैट लाइट टू अर्थ एंड मैन. और जब उनके फोल्डेड हैंड्स ऑफ प्रेयर महामाया के प्रति, देन इन ए सॉवरेन आंसर टू हिज हार्ट, ए जेस्चर केम एज ऑफ वर्ल्ड्स थ्रोन अवे. माने उनकी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में महामाया ने, कहते ना ले तुझे क्या चाहिए, तो क्या था, त्रिलोक चाहिए, सृष्टि चाहिए, सृष्टि के सब कुछ सारी शक्तियां चाहिए, ले. ए जेस्चर केम एज ऑफ वर्ल्ड्स थ्रोन अवे एंड फ्रॉम अ रेमेंट्स लस्ट्रस मिस्ट्री रेज्ड वन आर्म हाफ पार्टेड द इटर्नल्स वेल. साथ ही उन्होंने जो गार्ड कर रही थी ऑस्टियर अप्रोच टू द एलोन, उन्होंने अपने हाथ को हल्का सा उठाया, कहा तुझे द्वार चाहिए, मेरे पार जाना चाहता है, देखना चाहता है माया के पार क्या है, चल मैं द्वार खोलती हूं. वन आर्म हाफ पार्टेड द इटर्नल्स वेल, ए लाइट अपियर्ड स्टिल एंड इम्पेरिशेबल. अद्भुत प्रकाश जो हम सुनते हैं ना, उसका मुख एक ज्योत है, अद्भुत प्रकाश जिसके अंदर प्रवेश करने से सब समाप्त हो जाए. योगियों ने जब माया के पार गए, दर्शन किया, वे उसमें जाके उन्होंने स्वयं को समाप्त कर दिया. इट इज, बट श्री अरविंद कुछ और करेंगे, दैट्स समथिंग डिफरेंट. तो वो देखते हैं लाइट अपीयर्ड स्टिल एंड इम्पेरिशेबल, अट्रैक्टेड टू द लार्ज एंड ल्यूमिनस डेप्थ्स ऑफ द रैविशिंग एनिग्मा ऑफ हर आईज, ही सॉ द मिस्टिक आउटलाइन ऑफ ए फेस. Overwhelmed by her implacable light and bliss, an atom of her illimitable self. क्या महसूस करते हैं अशुपति? An atom of her illimitable self. Mastered by the honey and lightning of her power, tossed towards the shores of her ocean ecstasy. कल वो बात हो रही थी ना, गोपाल जी, कृष्ण की माया क्या है, किसने पूछा था, कौन से ऋषि थे, तो मार्कंडेय ऋषि ने. ये देखिए माया का एक वर्णन कि क्या है वो माया. टॉस्ड टुवर्ड्स द शोर्स ऑफ अर ओशियन एक्सटेसी, ड्रंक विद ए डीप golden spiritual wine he cast from the rent stillness of his soul a cry of adoration and desire. Uske baad kya bacha hai? Cry of adoration and desire. Maa, tumhi ho, tumhi ho, tumhi ho. And the surrender of his boundless mind. Koi sadharan yogi nahi hai Ashwapati. The surrender of his boundless mind. And the self-giving of his silent heart. Sab le lo, sab varan kar lo. He fell down at her feet, unconscious, prone. तब इसके बाद लास्ट स्टेयर पे खड़े होते हैं ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड्स द किंगडम्स ऑफ द ग्रेटर नॉलेज जहां से सुप्रामेंटल की शुरुआत होगी. देन ही इज गिवन दैट वे. सो वी कैन नॉट स्ले माया. वी कैन पास बियॉन्ड हर बाय हर ग्रेस बिकॉज शी इज द माया ऑफ द लॉर्ड. एंड इफ यू हैव प्लेड द गेम वेल, यदि हमने इस खेल को अच्छे ढंग से किया खेला है, भागते नहीं रहे इससे. इसीलिए मां कहती है हर चीज में परफेक्शन लाओ, हर चीज सुंदरता से करो. इफ इट इज ए प्ले, प्ले इट वेल. आश्रम में क्या, यही तो शिक्षा है. जो काम कर रहे हो उसको सुंदरता से करो, पूर्णता से करो, मुझसे जुड़ के करो. कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई गुफा में बंद करने की जरूरत नहीं है. फिर जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें रास्ता दूंगी आगे का. पर माँ तो माया के भी बियॉन्ड साक्षात भगवती शक्ति है. वील टॉक अबाउट इट लेटर.